ओम शांति।
बाबा के इस मधुबन आंगन में शिवरात्रि के पावन अवसर पर पधारे हुए सभी भाई बहनों का आबू अब्बा के घर में, अपने खुद के घर में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। रत्नागर शिव बाबा ने इस सृष्टि के अंदर ऐसे ऐसे बाबा के रत्नों को चुन करके हम सबके सामने लाया है, जो रत्न आज पूरे भारतवर्ष के अंदर अपने अपने गुणों की, शक्तियों की, विशेषताओं की चमक को बिखेर करके इतने सारे जग को देदीप्यमान कर रहे हैं। और उन्हीं रत्नों में से एक रत्न आज हम सबके सामने इस स्टेज के ऊपर विराजित हैं। आप हैं भोपाल से पधारी, भोपाल जोन से पधारी हुई सीहोर सेंटर की निमित्त ब्रह्मा कुमारी पंचशीला दीदी जी। आप पिछले 45 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। आप में बहुत विशेषताएं हैं, आप बहुत मर्यादित हैं और विशेष हम जो कहते हैं पवित्रता की देवी हैं। ऐसी बहन के लिए मैं दो लाइन जरूर कहना चाहूंगी कि हमने साजे जन्नत के, हमने साजे जन्नत के तार छेड़ करके ये गीत गुनगुना लिया। अब रही ना कोई आरजू, पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। ऐसी हमारी पंचशीला दीदी जी आज आप सबको ज्ञान रत्नों से जो भरपूर करेंगी, जिसमें विशेष आज का विषय है कि ब्राह्मण जीवन के अंदर मर्यादाओं का महत्व। आदरणीय पंचशीला दीदी जी,
ओम शांति। बाप दादा की छत्र छाया में पलने वाले हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं। हजारों भुजाओं वाला बाबा हम सभी ब्रह्मा वत्सों को संगम युग के इस अनमोल समय में ब्राह्मण जीवन देकर सारे विश्व के सामने प्रत्यक्ष कर रहा है। हमारा यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन, जिसका महत्व इस साकार दुनिया में भी बहुत है, आज इस साकार जगत के कोई भी कार्य बिना ब्राह्मणों के संपन्न नहीं होते। जन्म से लेकर और मृत्यु तक ब्राह्मणों का विशेष महत्व गायन किया गया है। आज दुनिया के जितने भी संस्कार हैं, उन संस्कारों को देने वाले लौकिक ब्राह्मण ही हैं। बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर आरंभ होता, उसका नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार और लास्ट में है फिर अंतिम संस्कार। तो इन संस्कारों के निमित्त ब्राह्मणों को ही रखा गया है। लेकिन आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि नामधारी ब्राह्मण भले ही यह कार्य करा रहे हैं, लेकिन उनका सच्चा भावार्थ क्या है या उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, यह ज्ञात न होने के कारण आज वह भले ही यह संस्कार करा रहे हैं, लेकिन मानव मात्र को वैसे सद संस्कार नहीं दे पा रहे जो संस्कार भविष्य नई दुनिया के लिए आवश्यक हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं जिनको डायरेक्ट ब्रह्मा बाप से जन्म मिला है, जो ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं, कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ कहलाते हैं, ऐसी ब्राह्मण आत्माएं जो दुनिया के हर रीति रस्म को बनाने के निमित्त हैं, आज दुनिया की जितनी भी यादगारें हैं या रीति और रस्म है, वह ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा ही आरंभ की गई है। और यह भी बाबा ने हम सभी को स्पष्ट रूप में समझाया है कि संगम समय से ही यह रीति रस्म आरंभ हुई है। इस संगम समय पर हम बाबा के ब्राह्मण बच्चों ने अपने जीवन के अंदर उन श्रेष्ठ मर्यादाओं को धारण किया, उन सद्गुणों को धारण किया, ऐसे श्रेष्ठ आचरण जीवन में अपनाए, अपने जीवन को गुणों से श्रृंगारित किया, आज उसी का ही यादगार हमें भक्ति में भिन्न भिन्न रूप से मिल रहा है। ब्राह्मण जीवन जिसके लिए कहा गया है, यह ब्राह्मण जीवन अनेकों के लिए प्रेरणा स्वरूप जीवन है, अनेकानेक आत्माओं के लिए उदाहरण स्वरूप जीवन है। इस ब्राह्मण जीवन के अंदर हम सभी कर्म के ब्राह्मण जो बाबा के बच्चे बने हैं, वह है वास्तव में कर्म के ब्राह्मण, और दुनिया के अंदर हैं नामधारी ब्राह्मण। केवल उनका नाम ब्राह्मण है, लेकिन वह धारणाएं उनके जीवन के अंदर नहीं है। जो हम ब्रह्मावत्सों के अंदर चार धारणाएं मुख्य रूप से वर्णित की गई हैं, जिस आधार से हम ब्राह्मण कहलाते हैं, वह हमारी धारणाएं ब्रह्म मुहूर्त उठना, ब्रह्ममय आचरण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, पवित्र सात्विक शुद्ध ब्रह्मा भोजन ग्रहण करना, और साथ साथ ब्रह्मा के द्वारा उच्चारित ब्रह्म वाक्यों को श्रवण करना और दूसरी आत्माओं को भी सुनाना। यह ब्राह्मण जीवन की जो मूल धारणाएं हैं, जिसके लिए बाबा हम बच्चों को सदैव कहते हैं कि अपनी इन धारणाओं को इतना हम मजबूत बनाकर के रखें, इन धारणाओं में इतने परिपक्व हों, जो कैसी भी विपरीत स्थितियों में हमारी ये धारणाएं कमजोर ना पड़े। ब्राह्मण जीवन की मूल मर्यादा जो पवित्रता है, जिस पवित्रता पर यह अलौकिक जीवन और यह ईश्वरीय ज्ञान टिका और थमा हुआ है। उस ब्राह्मण जीवन की इस पवित्रता की धारणा की मर्यादा और जिसकी गहराई हम सभी ब्रह्मवत्स अच्छी तरह समझते हैं। ब्राह्मण जीवन के अंदर मनसा, वाचा और कर्मणा, यह तीन प्रकार की पवित्रता ब्राह्मण आत्माओं के अंदर मुख्य रूप से होनी चाहिए और जो बाबा के बच्चे बने हैं उनमें ये धारणाएं हैं भी, लेकिन कब कब माया का साम्राज्य होने के कारण, चारों ही तरफ रावण राज्य होने के कारण, या कहें कि कारण विघ्न समस्याएं और अनेक प्रकार की विपरीत स्थितियों के होने के कारण जो कब कब हमारी मर्यादाएं कमजोर पड़ जाती हैं, धूमिल हो जाती हैं, वह ना हो, उसके लिए हमें अपने आप को खुद ही पक्का करना होगा, हमें अपने आप को खुद ही मजबूत बनाना होगा, अपने आप से खुद ही हमें दृढ़ संकल्प करना होगा, जो भक्ति में गायन किया गया है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वह कौन से वचन है? जैसे लौकिक जगत के अंदर एक स्त्री वचन लेती है, पुरुष वचन लेता है, ऐसे ही हम ब्राह्मण जीवन में आए, ब्रह्मा वत्स बने, तो हम सभी ने भी ब्रह्मा बाबा के सामने या शिव बाबा के बच्चे बनकर शिव बाबा के आगे हम सभी ने क्या की? दृढ़ प्रतिज्ञा की। कौन सी दृढ़ प्रतिज्ञा की? जो हम दूसरों को भी सुनाते हैं, शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा के तन में आकर जो सबसे पहला वचन आज्ञा हमको दी, पवित्र बनो और राजयोगी बनो। तो ब्राह्मण जीवन के अंदर यह पवित्रता की जो मर्यादा है, यह हमारी सेफ्टी का साधन है। आज बाहरी जगत में हम सभी देख रहे हैं कि इस अपवित्रता के कारण ही आज अशुद्ध तामसिक आहार के कारण ही, अपवित्र गलत संग के कारण ही, या अनेकानेक प्रकार के बाहरी प्रलोभन और अनेक प्रकार के दैहिक आकर्षण, वस्तु और साधनों के आकर्षण की अपवित्रता के कारण ही आज व्यक्ति दिनों दिन गिरावट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ब्राह्मण जीवन के अंदर भी जब हमारी यह मर्यादाएं कमजोर पड़ती हैं, जहां हमारे जीवन के अंदर थोड़ी भी अपवित्रता आती है, तो यह अपवित्रता ही व्यर्थ संकल्पों को जन्म देती है, यह अपवित्रता ही अनेक प्रकार की विघ्न और बाधाओं को उत्पन्न करती है, यह अपवित्रता ही अनेक प्रकार का अशांति का वातावरण, कलह और कलेश का वातावरण क्रिएट करती है। तो अगर कहीं किसी प्रकार से हम देखते हैं कि मन में थोड़ी भी अशांति उत्पन्न होती है, या कहीं किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई विघ्न हमारे पुरुषार्थ में सामने आता है, या बार बार हमारा पुरुषार्थ रुकता है, अवस्था हमारी हलचल में आती है, या व्यर्थ के संकल्प विकल्प हमारे मन में चलते हैं, तो इसका मूल कारण, हमारी जो मूल धारणा है उसको हम चेक करें। समय प्रति समय, जैसे एक बिल्डिंग को हम चेक करते हैं कि कहीं से ये बिल्डिंग कमजोर तो नहीं हो रही है, इसकी नींव कमजोर तो नहीं पड़ रही है, या कहीं से ये टूट फूट तो नहीं रही है, हम उसका कहीं ना कहीं से हर प्रकार से उसको ठीक करते रहते हैं, कहीं से भी टूट फूट होती हम उसको बराबर उसका मेंटेनेंस बनाए रखते हैं, जिससे कि ये गिर ना जाए, धराशायी ना हो जाए। ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन की जो मूल धारणा है, इसे भी हमें समय प्रति समय चेक करने की बहुत जरूरत है। हम अपने ब्राह्मण जीवन के अंदर चेक करें कि हमारी यह जो मर्यादा है, कहीं किसी कारण से कमजोर तो नहीं हो रही है। चाहे हम कितने बड़े संगठन में हों, अनेकों व्यक्तियों के साथ में हों, संपर्क में हों, व्यवहार में हों, लेकिन किसी भी प्रकार से दैहिक आकर्षण जो इम्प्यूरिटी का स्वरूप है, यह हमारे ब्राह्मण जीवन के अंदर ना हो, जिसे हम फैमिलियरिटी का संस्कार भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नाम रूप का आकर्षण, चाहे वह किसी की देह के प्रति हो या अपनी देह के प्रति हो। अपवित्रता कोई भी हो, वह हमारी आत्मिक शक्ति को क्षीण करती है, हमारी आत्मिक शक्ति को कमजोर करती है। जैसे कि व्यर्थ के संकल्प, जितना ज्यादा व्यर्थ के संकल्प हमारे अंदर चलते हैं, व्यर्थ का वातावरण हमारे पास होता है, व्यर्थ के विचार हमारे पास होते हैं, उतना ही हमारी आत्मिक जो शक्ति है वह हमारी कमजोर पड़ती जाती है। तो ब्राह्मण जीवन के अंदर हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, ज्ञान की अनेक प्रकार की पॉइंट्स, नित नई पॉइंट्स हमारे सामने आती हैं, हम उनका मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, ज्ञान की गहराई में जाकर ज्ञान की भिन्न भिन्न पॉइंट्स भी हमारे पास हैं, सेवा के विस्तार में जाकर हम अनेक प्रकार की सेवाएं भी कर रहे हैं, वह भी दिनों दिन विस्तार हमारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन मूल में हम देखें, हमारी आत्मा की जो शक्ति है वह क्षीण हो रही है। कई लोग कहते हैं पहले हमारा योग बहुत अच्छा लगता था, पहले हमारे अंदर बहुत अच्छी एकाग्रता थी, हमारे जो संकल्प करते थे वह संकल्प हमारा सिद्ध हो जाता था, लेकिन अभी कुछ समय से इतना अच्छा योग नहीं लग रहा है, या कुछ समय से इतना अच्छा योग में आनंद नहीं आता है। बैठते हैं लेकिन जो शक्तियां मिलनी चाहिए, जो बाबा से वरदान मिलने चाहिए, जो बाबा से हमको प्राप्तियां होना चाहिए, वह हमको नहीं हो रही हैं। क्यों? जरूर कहीं ना कहीं हमारी मर्यादाएं कमजोर पड़ रही हैं। हम उन्हें चेक करें, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म चेकिंग। कई बार हम आपसी संबंध और संपर्क में आते हुए हमारी जो धारणा है शुद्ध पवित्र और सात्विक भोजन की, कई बार हम हल्का हो जाते, इतना तो चलता है, अभी क्या करें, ये कारण हमारे सामने है, क्या करें, ये समस्या हमारे सामने है, बहुत बड़ा परिवार हमारा है, समाज में हमको उठना बैठना पड़ता है, क्या करें, हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां बार बार आती हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, कई बार अपनी इन धारणाओं को हम हल्का कर देते हैं और क्या समझते हैं, इतना तो चलता है। लेकिन बाबा हम सभी को मुरलियों में हमेशा मजबूत करता है, क्योंकि मनसा के कमजोर होने का कारण, मन में व्यर्थ संकल्प क्रिएट होने का जो कारण बनता है, वह क्या बनता है, कहीं ना कहीं अन्न की अपवित्रता, या हमारा शुद्ध अन्न का जो नियम है उसमें हम कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं या ढीले पड़ जाते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं, जो हमारा पेपर होता है, लेकिन उस घड़ी हम क्या करते हैं, उस पेपर में पास होने की बजाय हम कमजोर हो जाते हैं और क्या करते, इतना तो चलता है। लेकिन बाबा ने तो किसी मुरली में नहीं कहा कि बच्चे इतना चलता है, इतना हल्का कर दो, नहीं। बाबा सदैव हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे आपको पक्का रहना है, मजबूत बनना है, कैसी भी स्थितियों में आपको हलचल में नहीं आना है, तो अपने हम भोजन को भी चेक करें, हम जो भोजन कर रहे हैं और उसकी गहराई में अगर जाएं, हम जो कमाई कर रहे हैं या जिन भावनाओं में जिस वृत्ति से हम भोजन तैयार कर रहे हैं, हमारी जो मातृशक्ति है उनके ऊपर तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सारे घर के वातावरण को पवित्र बनाने की कहें, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी वृत्ति को सात्विक और शुद्ध बनाने की जिम्मेवारी जो कहें किसके ऊपर है? आप मातृशक्ति के ऊपर है, क्योंकि आप कितना बड़ा कार्य करते हैं, भोजन निर्मित करते हैं। और भोजन निर्मित करना माना क्या, उसमें आप अपना स्नेह, अपना प्यार, अपनी शुद्ध भावनाएं, आप अपनी शुद्ध वृत्ति, उसके साथ साथ आप अपने मन के जो संकल्प हैं, उन संकल्पों को भोजन के अंदर आप डालते हैं। कैसे? उस भोजन को निर्मित करके। तो जितना भोजन आप प्यार से बनाते हैं, खुश होकर के बनाते हैं, शुभ भावना से, शुभ कामना से बनाते हैं, इस भाव से बनाते हैं कि खाएं, जो भी खाएं उनको शक्ति मिले, उनकी बुद्धि शुद्ध हो, उनके विचार श्रेष्ठ हो, उनकी उन्नति हो, उनके कर्म संस्कार परिवर्तन हो, इस भाव से हम बनाते हैं तो उस वृत्ति का प्रभाव उस भोजन पर पड़ता है, और जो उस भोजन को ग्रहण करते हैं उनकी वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक बनती है। तो हमारे द्वारा जो भोजन निर्मित होता है वह भोजन बहुत मायने रखता है। आप ऐसे नहीं समझे कि हमारी ड्यूटी है या हमारा ये कार्य, हमको तो करना ही है। कई बार कार्य का बहुत बोझ होता है तो हम थोड़ा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, थोड़ा हम बोझिल भी हो जाते हैं, अरे मुझे ही करना है, अब कैसे भी करना है, कैसे भी करके हम कर देते हैं। लेकिन नहीं, बाबा क्या कहता है, बच्चे ये जो कार्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा की मुरली में कितने बार आता है कि आप इतना शक्तिशाली भोजन निर्मित कीजिए, इतना शुद्ध पवित्र भावनाओं से भोजन आप बनाइए जो आपके परिवार के लोगों की वृत्ति चेंज हो जाए, उनका संस्कार चेंज हो जाए, उनका स्वभाव चेंज हो जाए। तो आप देखो शास्त्र प्रसिद्ध कथा में भी वर्णित है कि किस प्रकार से जब भीष्म पितामह जी वाणों की शैया पर लेटे हुए थे और बहुत ज्ञान युक्त उपदेश दे रहे थे, तब द्रौपदी ने उनसे यही शब्द कहे कि जब भरी सभा में मेरी लाज लूट रही थी उस समय आपके उपदेश कहाँ गए थे? तो भीष्म पितामह ने क्या कहा कि उस समय मैंने कौरवों का अन्न खाया था और उस समय मेरी नसनाड़ियों में कौरवों के खाए हुए अन्न का रक्त प्रवाहित हो रहा था और आज अर्जुन के वाणों से यह रक्त निकल गया है, इसलिए पुनः मेरे अंदर जागृति आई है और मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। तो आप देखो शास्त्र प्रसिद्ध उदाहरण है कि अपवित्र भोजन से बुद्धि कितनी अपवित्र हो गई कि सामने अकर्तव्य होता रहा लेकिन वह उसका विरोध नहीं कर पाए। तो हमें इस ब्राह्मण जीवन के अंदर बाबा ने जो धारणाएं दी हैं, जो हमें मर्यादाएं दी हैं, वास्तव में ये मर्यादाएं हमारी सेफ्टी का साधन है। आज दुनिया में आप आए दिन सुनते हैं कि अपवित्र भोजन खाने से किसी के ऊपर प्रभाव हो गया। आज लोग तंत्र विद्या के द्वारा, मंत्र विद्या के द्वारा या अनेक प्रकार की, कोई मूठ भेज रहा है, कोई अपवित्र भोजन दे रहा है, कोई कुछ मिला करके दे रहा है। आज ये आए दिन हम कई केसेस सुनते हैं और उसके परिणाम बड़े ही हानिकारक हम देख रहे हैं। अगर हम गहराई में जाएं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है अपवित्र भोजन या कहीं ना कहीं अन्न की शुद्धि के नियम का उल्लंघन। मुझे अच्छी तरह याद है, हम ग्वालियर में थे तो एक माता थी जो ज्ञान में आती थी, उनके जो पति थे वो पूरी रीति ज्ञान में नहीं चलते थे और कभी कभी कहां कहां वो भोजन ग्रहण कर लेते थे, लेकिन उस माता जी का शुद्ध भोजन का नियम बहुत पक्का था, बहुत पक्का नियम था। उनके पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, कई जगह उनको दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट भी उनको दिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार से उनका इलाज कंप्लीट नहीं हुआ या ऐसा कहीं कि कोई भी दवाई ने उनको असर नहीं किया और वो ठीक नहीं हो सके और आखिरकार उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उस आत्मा के निमित्त बाबा को भोग लगाया गया और बाबा को भोग स्वीकार कराया तो जैसे बाबा ने संदेश में भी दिया कि इस बच्चे ने इस नियम का उल्लंघन किया, और वो दृश्य भी बाबा ने दिखाया कि कैसे किसी आत्मा के घर उन्होंने भोजन ग्रहण किया और उनको अपवित्र चीज अशुद्ध चीज उस भोजन में खिलाई गई, और उसका परिणाम यह हुआ कि उसका असर उनके ऊपर कुछ महीनों तक बराबर होता रहा और उससे अनेक बीमारियां उत्पन्न होती रही और आखिरकार वो इस दुनिया से चले गए। कहने का मेरा भाव है कि बाबा ने हमको जो ये नियम दिए हैं ये हमारी सुरक्षा का साधन है। आज हम पवित्र भोजन ग्रहण करते हैं तो कोई हमें कुछ खिला ही नहीं सकता है, क्योंकि हम कहीं बाहर में खाते ही नहीं है, हम अपवित्र हाथों का बना हुआ पवित्र लोगों के हम खाते ही नहीं है। तो हमारे ये जो नियम है ये जैसे कि हमारी खुद की सुरक्षा कर रहा, हमारा हमारी सेफ्टी कर रहा है। तो बाबा ने हमको जो नियम दिए हैं, आज दुनिया में अनेक प्रकार के जो रोग हैं, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, या अनेकानेक प्रकार की जो मेंटली रीति से लोग अपसेट हो रहे हैं, उसका कारण अगर हम देखें तो क्या है, कहीं ना कहीं अपवित्रता, या कहीं ना कहीं खान पान की अशुद्धि, या तामसिक आहार या व्यसनों का सेवन। और जो बाबा के बच्चे बन गए हैं वो बहुत सारी गलत धारणाओं से, व्यसनों से, बुराइयों से और अनेक प्रकार के अशुद्ध आहार से, व्यर्थ के अनेक प्रकार के खर्चों से क्या हो गए, बच गए। नहीं तो आप देखो, आप खुद अशुद्ध भोजन करते होते तो आपको अपने संगी साथियों को भी पार्टियों में, अनेक प्रकार के क्लबों में, अनेक स्थानों पर आपको भी उनको भोजन कराना पड़ता, या अपवित्र चीजें खुद भी खाते उनको भी खिलाते, तो कितना वेस्टेज आपका होता। आज कितने सारे व्यर्थ से बाबा ने हम बच्चों को बचा दिया है। तो ये व्यर्थ दुनिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। आज आप देखेंगे कि आज मुख के माध्यम से ही व्यक्ति अपवित्र चीजें ग्रहण कर रहा है, अपवित्र वचनों का प्रयोग कर रहा है, और उसके कारण आप देखें आपसी संबंधों में दरारें पड़ रही हैं, आपसी संबंधों में टकराव पैदा हो रहा है, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, या संबंधों में कहीं ना कहीं खराबी पैदा हो रही है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं अशुद्ध वचन, अशुभ वचन, या कहीं ना कहीं अशुद्ध भोजन और ऐसे लोगों का संग जो उनको इस अशुद्ध कर्मों की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। तो बाबा ने हमको जो मर्यादाएं दी हैं, वास्तव में ये मर्यादाएं हमारे ब्राह्मण जीवन की आधारभूत स्तंभ हैं। हमारे ब्राह्मण जीवन को शक्तिशाली बनाने की ये नींव है। अगर एक एक बात की हम गहराई में जाएं, तो हमारे ब्राह्मण जीवन का एक छोटा सा नियम है, आप देखिए अमृत वेला का, ये हमारी ईश्वरीय ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। हम ब्राह्मण बच्चे दुनिया वालों की तरह बहुत देर तक नहीं सो सकते। बाबा ने हमको क्या कहा है, आपको अमृत वेला उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग करना है। हमें बाबा से वरदान और बाबा से शक्तियां जो प्राप्त होती हैं, वो किस समय प्राप्त होती हैं? अमृत वेले ही प्राप्त होती हैं। उस समय वरदानी बाबा अपने वरद हस्तों से हमको वरदान लुटाते हैं। और यह अमृत वेले उठने का जो हमारा संस्कार है, केवल इस संगम युग का नहीं है, लेकिन आने वाली भविष्य नई दुनिया में भी क्या होगा, वहां भी हम अमृत वेला उठेंगे। ऐसा नहीं केवल संगम युग पर ही उठेंगे, लेकिन ये संस्कार जो हम यहाँ डाल रहे हैं, चाहे शुद्ध पवित्र भोजन खाने का संस्कार है, पवित्र जीवन बनाने का संस्कार है, मन वाणी कर्म से पवित्र रहने का संस्कार है, जल्दी उठने का संस्कार है, सबसे मीठा बोलने का संस्कार है, सबसे अच्छा व्यवहार करने का संस्कार है, सबको आगे बढ़ाने का संस्कार है, सबका भला सोचने या भला करने का संस्कार है, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने का संस्कार है। यहाँ ये संस्कार हम अपने अंदर डाल रहे हैं, और सतयुग में क्या होगा, ये नेचुरल होगा, वहां इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई पुरुषार्थ नहीं करना होगा। ना अमृत वेले उठने का हमें पुरुषार्थ करना है, ना मीठा बोलने का हमको पुरुषार्थ करना है, ना हमको शुद्ध सात्विक भोजन खाने का पुरुषार्थ करना है, ना जीवन को पवित्र श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना है। ये सारा ही पुरुषार्थ, ये सारी ही मर्यादाएं इस समय हम ब्राह्मण बच्चों के जीवन में, आचरण में, कर्म और व्यवहार में इस समय लानी होती हैं, क्योंकि यह हमारा जन्म नींव फाउंडेशन का है। ये ब्राह्मण जीवन और ये संगम युग का समय ये बहुत बहुत वैल्यूबल है, बहुत बहुत कीमती समय है। तो ये जो कीमती समय हम सभी को मिला है, इसका एक एक सेकंड हमें क्या करना है, सफल करना है। कैसे सफल करेंगे, सफल कैसे होगा, जो बाबा ने भी हमको बताया कि बच्चों का बहुत सारा समय व्यर्थ संकल्प विकल्पों में जाता है। आज हमारी बहुत सारी जो शक्ति है वो व्यर्थ सोचने में जा रही है। अगर जरा सी थोड़ी सी कोई बात हो जाती है, कोई हमसे कुछ कह देता है, या कोई गलत व्यवहार हमारे साथ कर देता है, या कहीं किसी प्रकार से कोई कार्य में हमको सफलता नहीं मिली, या जो किसी से अपेक्षा रखी उस अनुसार हमको प्राप्ति नहीं हुई, या किसी कार्य में हमने सफलता चाही लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली, क्या होता है, आपके मन में व्यर्थ के संकल्प विकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है, ना मालूम मेरा भाग्य कैसा है, ना मालूम बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बाबा ने कितना ऊंचा भाग्य हम ब्राह्मण बच्चों को दिया है, कितना ऊंचा जीवन बाबा ने हम बच्चों को दिया है, लेकिन क्या होता है, हमें उस घड़ी क्या होता है, अपने इस ब्राह्मण जीवन में भी संशय पैदा हो जाता है। किस कारण से, किसी ने हमसे कुछ खरा खोटा बोल दिया, या किसी ने हमारे साथ व्यवहार गलत कर दिया, या कोई अनिष्ट हमारे साथ हो गया, या कोई ऐसी घटना घटित हो गई जो हमें पसंद नहीं थी, या हम जो नहीं चाहते थे, हम उसके लिए कहते, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, हमने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है, तो क्या होता है, उसको लेकर के हमारे मन में बहुत सारे व्यर्थ के संकल्प विकल्प चल जाते हैं। और इतना संकल्प विकल्प चलते हैं कि हम बाबा की याद में बैठने की कोशिश करते हैं, मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, बार बार मन को यहाँ वहां से खींच करके लाते हैं, बाबा में एकाग्र करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, बार बार हमारा मन उस व्यर्थ के संकल्प में, व्यर्थ के विचार में चला जाता है। तो सारे दिन की दिनचर्या में हम चेक करें कि हमारे मन के अंदर व्यर्थ तो नहीं चलता है, और अगर चलता है तो क्या उसको समाप्त करने की शक्ति आपके पास है, क्या आप उसे समाप्त कर सकते हैं, या वो व्यर्थ आप चाहते हुए भी नहीं रोक पाते हैं? मैं तो जहां तक समझती हूं कि अधिकतर लोगों के सामने ये समस्या है, और कई कहते हैं कि हम चाहते तो हैं कि योग में हमारा चित्त एकाग्र हो, हम चाहते हैं कि व्यर्थ के विचार हमारे मन में ना चलें, हम चाहते हैं ये बात हम नहीं सोचें, इस पर कोई चिंतन हमारा ना हो, लेकिन हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार हमारे मन में वही बात आ जाती है, मुख से कहेंगे अब इस बात पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, और 10 मिनट के बाद फिर घूम फिर कर फिर इसी चर्चा पर पहुंच जाते हैं, फिर कहेंगे अच्छा ठीक है अभी आज से छोड़ो इस बात को, चलो हटाओ, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वही बात हमारे मन में क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें अंदर से अपने आप को तैयार करना है। जो बाबा ने भी कहा कि व्यर्थ चिंतन क्यों चलता है, व्यर्थ के विचार क्यों आते हैं, मनन शक्ति की कमी के कारण। ज्ञान का जो खजाना है वो हमारे पास नहीं है या कम है, इसलिए क्या होता है, व्यर्थ का चिंतन ज्यादा चलता है, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हैं, पॉजिटिव थॉट्स हमारे पास बहुत कम है। तो उसके लिए हमेशा हमें एक बात याद रखें कि हमें अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करना है। कोई भी व्यर्थ बात आती है दिमाग में, उसको झड़क दो, आप एक तरफा कर दो उस पर। देखो छोटी सी एक दृष्टांत मुझे याद आता है कि एक व्यक्ति के पास एक गधा था, और वो गधा बूढ़ा हो गया और कोई काम का नहीं, बोझ भी नहीं उठा पाता था, ज्यादा चल फिर भी नहीं पाता था, तो कहा क्या करें इसका, बस खाता रहता, पड़ा रहता है। कहा चलो इसको दफना दो, उसको तू हटाओ यहाँ से। उसने कहा चलो आज इसका काम ही तमाम कर देते हैं। एक गड्ढा खोदा, उसमें गधे को उतार दिया और कहा भी चलो मट्टी, एक तगाड़ी डाली, दो तगाड़ी डाली। गधे ने देखा तो मैं दब रहा हूँ इससे, तीसरी तगड़ ऐसे करके उसने सारी मट्टी झड़क दी, सारी मट्टी नीचे हो गई। फिर दूसरी तगड़, फिर उसने ऐसे झड़क दिया। तगाड़ी डालते जाते वो मट्टी झड़कता जाता और धीरे धीरे क्या हुआ, वो गड्ढा भर गया और गधा ऊप निकल करके बाहर आ गया जिंदा। अगर समाज में, जीवन में हमें भी जिंदा रहना है और हम भी चाहते हैं हम मजबूत रहें, शक्तिशाली रहें, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, बातों की मट्टी तो बहुत आपके ऊपर गिरेगी, कारण समस्याएं तो बहुत आपके सामने आएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, एक सेकंड मुझको ऐसे करके झड़क देना है, तो क्या होगा, आप हल्के हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, एक कारण आया उसने थोड़ा बोझिल किया, फिर दूसरा कारण आया उसने और बोझिल किया, तीसरा कारण आया उसने और ज्यादा व्यर्थ चलाया, चौथा कारण आया आंखों से आंसू भी आ गए, पांचवा कारण आ गया टेंशन में इतने चले गए कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा, और समस्या आ गई डिप्रेशन में चले गए। आज दुनिया में हम देख रहे हैं ना, वर्तमान समय आज स्थिति क्या है, व्यक्ति व्यर्थ से इतना दबता जा रहा है, इतना दबता जा रहा है कि उससे अपने आप को उबार नहीं पा रहा है। और बाबा ने हम ब्रह्मा वत्सों को कितनी अच्छी युक्ति बताई है, कितना अच्छा तरीका बताया है कि बच्चे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने पास ज्ञान के रतन, हीरे मोती जवाहरात इकट्ठे करने, तुम्हें व्यर्थ के कंकड़ पत्थर इकट्ठे नहीं करने हैं, व्यर्थ की बातें इकट्ठी नहीं करनी है, आएंगी जरूर, लेकिन ये समझ बाबा ने हमको दी है कि हमें क्या करना है, हमें अपने पास समर्थ संकल्प ही रखने हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पवित्रता के देवता हैं, और देवताओं से भी ज्यादा मान किसका है, देवताओं से भी ज्यादा मान ब्राह्मण आत्माओं का है। लेकिन आज ब्राह्मण आत्माएं अगर अपने वास्तविकता को भूल जाएं, अपने ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता को भूल जाएं, तो दूसरों को प्रेरणा देने वाली आत्माएं, हर कार्य में नंबर वन रखने वाली आत्माएं, हर कार्य की शुरुआत करने वाली आत्माएं, जिनके बिना मुहूर्त निकलवाए दुनिया के कोई भी काम नहीं होते, ऐसी ब्राह्मण विशेष आत्माएं अगर घड़ी घड़ी अपने कर्म बंधनों में बंधती हैं, अपने ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता से विचलित हो जाती हैं या भूल जाती हैं, तो क्या कहेंगे, उन्हें अपना श्रेष्ठ भाग्य याद नहीं है, मुझे किसने चुना है, किसकी मैं संतान हूं, कौन मुझे मिला है, कौन मुझे पढ़ा रहा है, कौन मेरा श्रृंगार कर रहा है, किसने मुझे संसार के सामने प्रकट किया है, हम इस बात को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो बाबा ने हम सभी को एक लक्ष्य दिया है कि आपको इस संगम समय में अपने ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करना है, ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता को लाना है। तो उस प्रत्यक्षता को लाने के लिए हम सभी को ब्रह्मा बाप समान बनना होगा। तो ब्रह्मा बाप भी ब्रह्मा बाप समान कैसे बने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया और शिव बाबा के जो गुण हैं, उन गुणों को ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में उतारा और हम सभी के सामने ब्रह्मा बाबा क्या बन गए, उदाहरण मूरत बन गए। और हम ब्रह्मा वत्स अभी अपने को क्या बना रहे हैं, ब्रह्मा बाप समान उदाहरण मूरत बना रहे हैं। तो हम ब्राह्मण आत्माएं जिनका एक एक सेकंड, जिनका एक एक वचन, जिनका एक एक कर्म सारे विश्व की आत्माओं के सामने क्या है, उदाहरण रूप है। जो बाबा ने कहा है कि विश्व की सारी आत्माएं आप ब्राह्मण बच्चों को देखकर आपसे क्या लेंगी, प्रेरणा लेंगी। कौन सी प्रेरणा, जीवन को पवित्र श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा, जीवन को खुशहाल बनाने की प्रेरणा, हर परिस्थिति में खुश रहने की प्रेरणा किससे लेंगी, हम ब्राह्मण बच्चों से। जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थितियां हों, उन परिस्थितियों में हम डगमग न हों, हम हलचल में न आए, कैसी भी विपरीत स्थितियों में भी हमारी खुशी गुम न हो, हमारा पुरुषार्थ कम न हो, ऐसी हम विशेष आत्माएं हैं। हमें अपनी इन विशेषताओं को अपने इस ब्राह्मण जीवन से औरों को दिखाना है। इस लास्ट के समय में बाबा ने हमको जो सेवा दी है वह कौन सी है? अपने ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ धारणाओं के द्वारा, इस ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ परिवर्तन के द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना, आपके जीवन का परिवर्तन देखकर उनके मन में भी प्रेरणा आए कि हम भी अपने जीवन को ऐसा खुशनुमा बनाएं, हम भी अपने जीवन को इतना सादगी युक्त बनाएं, हम भी अपने जीवन को ऐसा पवित्र और श्रेष्ठ बनाएं, ये हमारे जीवन से उनको क्या मिले? प्रेरणा मिले। तो ऐसी प्रेरणा देने वाली हम सभी ब्राह्मण आत्माएं इस संगम युग पर, इस लास्ट समय में खुद भी मजबूत रहें, परिपक्व रहें, मर्यादित रहें, कहीं भी अपनी मर्यादाओं को तोड़े नहीं, कहीं भी कमजोर ना बने, और अगर कोई आत्मा कमजोर पड़ती है तो हम उनको हिम्मत दें, उमंग दें, उल्लास दें और इतनी शक्ति उनको दें कि वह भी अपनी धारणाओं में परिपक्व और मजबूत बन जाएं। ओम शांति शांति शांति।
देखो तो। Thank you.